सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र। आज हम चर्चा करेंगे ग्रेट निकोबार परियोजना के आर्थिक और सामरिक महत्व पर। यह परियोजना भारत की समुद्री रणनीति, व्यापारिक संभावनाओं और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक्सपर्ट और जेएनयू के प्रोफेसर राहुल मिश्र। राहुल जी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी।
राहुल जी, हमारे बहुत सारे श्रोता शायद पहले ये जानना चाहेंगे कि ग्रेट निकोबार परियोजना क्या है और इसकी मूल अवधारणा क्या है।
ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसके पीछे कई मकसद हैं। उनमें सबसे प्रमुख ये है कि भारत के अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद हमें गहराई से ये इस बात समझ में आ रही है कि इंटरनेशनल चोक पॉइंट्स जो हैं या समुद्री व्यापार के जो केंद्र हैं, क्षेत्रीय जो हब हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और ट्रांसशिपमेंट के लिए तमाम देशों को ये कोशिशें करनी पड़ेंगी कि कैसे उनके जो ईस्ट वेस्ट ट्रांसशिपमेंट है उसमें सुधार कैसे हो। तो इस लिहाज से ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसकी बहुत महत्ता है, क्योंकि भारत का जो व्यापार है वो ईस्ट वेस्ट जो ट्रांसशिपमेंट कॉरिडोर है उसमें भारत के जो बड़े पोर्ट्स हैं वो पश्चिमी भारत में हैं, मुंद्रा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और अब क्योंकि पश्चिम और पूर्व दोनों क्षेत्रों में भारत को अपनी जो समुद्री व्यापार है और ट्रांसशिपमेंट जो है उसको एक संतुलित करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत के पास एक ऐसा पोर्ट हो जो हिंद महासागर से और स्ट्रेट ऑफ मलाका से जोड़ने के लिए नजदीक हो और जिसकी मदद से भारत के पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तरी भारत में तेजी से जो समुद्री व्यापार से जो सामान आता है उसको तेजी से भारत के अंदर इंपोर्ट किया जा सके और भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाए। फिलहाल भारत क्लांग जो मलेशिया का पोर्ट है और सिंगापुर पोर्ट और भारत के नजदीक कोलंबो पोर्ट है, इन पर बहुत ज्यादा आधारित है। तो इसलिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को एक दिशा दी जा रही है। 2047 तक इसे तीन फेजेस में पूरा करने का प्रस्ताव है और उस पर कार्य चल रहा है। दूसरी ये इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी जो डिपेंडेंस है, हमारी जो निर्भरता है विदेशी पोर्ट्स पर, उसको कम किया जा सके। जो मेगा पोर्ट्स हैं सिंगापुर और क्लांग, उन पे हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। कल को ऐसी स्थिति आ सकती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसी घटनाएं हुई वैसी ही चीन के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है और मलाका स्ट्रेट में ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो भारत के लिए इन फॉरेन पोर्ट्स की डिपेंडेंसी एक नेगेटिव इसका इम्पैक्ट होगा। और इसके लिए जरूरी है कि भारत पोर्ट्स के मामले में भी आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने। अभी विजयनगरम पोर्ट जो केरला में है वो 2024 में फंक्शनल हो गया, उससे बहुत ज्यादा ट्रांसशिपमेंट का काम हो रहा है, भारत का पहला ग्रीन फील्ड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें निकोबार में, गलथिया बे में हमें जो ये पोर्ट बनेगा उससे भारत की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, भारत का व्यापार भी बढ़ेगा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, समुद्री व्यापार में और सामरिक तौर पर भी एक नई पहचान बनेगी।
जी, और जितने बिंदु आपने अभी बताए किस तरह से इसका लाभ हो सकता है और किस तरह से हमारे देश को ये सशक्त बनाने में सहायक हो सकता है, तो क्या इन्हीं कारणों से इसे एक गेम चेंजर माना जा रहा है या और भी कुछ बिंदु हो सकते हैं?
देखिए, गेम चेंजर तो सामरिक और आर्थिक तौर पे ये बहुत ही स्पष्ट है। गलथिया बे जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, गलथिया बे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, उसका एक हिस्सा है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। साथ ही साथ इसको गेम चेंजर इसलिए माना जा रहा है, आपको याद होगा बीते वर्षों में एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप की यात्रा की और कैसे भारत के सैलानियों के लिए, भारत के टूरिस्ट के लिए मालदीव्स और मॉरिशस और मलेशिया से ज्यादा भारत के जो पोर्ट्स हैं, भारत के जो इस तरह के आइलैंड्स हैं, वहां की यात्रा एक बहुत ही अनूठा और बहुत ही आकर्षक एक डेस्टिनेशन लगा। तो मुझे लगता है कि जो ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट है उसमें चार पहलू हैं। एक तो ट्रांसशिपमेंट है ही है, उसके साथ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देखिए, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो होते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच शुरू होते हैं, एक खाली जमीन पे वो एयरपोर्ट बनते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि उसे एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे मानव संसाधनों से रिलेटेड या मानवीय जो आवश्यकताएं उनको ध्यान में रखते हुए, पर्यावरणीय जो आवश्यकताएं और कंस्ट्रेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं। तो एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जिसको सस्टेन करने के लिए 400 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट भी होगा। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा उससे इनबाउंड जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो भी आएंगे भारत में, और पोर्ट ब्लेयर तो एक बहुत बड़ा पोर्ट है ही है, उसके साथ साथ गलतिया बेस से सटे हुए इस एयरपोर्ट पर भी लोग आएंगे और सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, भारतीय टूरिस्टों के लिए भी एक बहुत अच्छी संभावना प्रदान करता है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स, जो ट्रांसशिपमेंट कंटेनर जो पोर्ट है और एयरपोर्ट, इसको चलाने के लिए सोलर पावर प्लांट है उसको चलाने के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए। किसी भी एक जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वहां पे जो मैन पावर या वुमन पावर है उसको सस्टेन किया जा सके, वहां की लोकल इकोनॉमी को सस्टेन किया जा सके, वहां के पर्यावरणीय जो आकर्षण के केंद्र है उनको भी सहेज के रखा जा सके। उसके लिए जरूरी है कि एक टाउनशिप भी बनाई जाए, तो इसमें एक टाउनशिप का भी प्रोग्राम है। तो मुझे लगता है इन सभी को अगर हम साथ में रख के देखें तो न सिर्फ एक ये समुद्री व्यापार के हिसाब से बहुत बड़ा गेम चेंजर है, बल्कि आर्थिक तौर पे और सैलानियों को उस क्षेत्र में ले जाने के लिए, अंडमान निकोबार में ले जाने के लिए बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ इसमें जो भारत की विदेश नीति में हम अगर देखें तो पिछले 10-12 सालों में हमने देखा है कि पोर्ट लेड ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ को डोमेस्टिकली बहुत प्रमोट किया गया है। तमाम ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, उड़ान एक स्कीम है, या उत्तर पूर्वी भारत में तमाम जो फ्लाईओवर्स और हाईवेज बन रहे हैं वो हैं। लेकिन साथ ही साथ जो सागरमाला का इनिशिएटिव है, भारत के तमाम जो पोर्ट्स हैं उनको जोड़ा जाए, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे मानकों पर खरा उतरे हमारे भारत के सारे पोर्ट्स कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी सुनिश्चित कर सकें, समयबद्ध ढंग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित कर सकें, और साथ ही साथ वो इंटरनेशनल ट्रेड में आगे आने वाली जो संभावना है उसको भी टैप कर सकें। इसके साथ जो भारत की जो हाल में जो नीतियां आई हैं विदेश नीति के संदर्भ में, महासागर है जिसे हम पहले सागर कहते थे, महासागर के हिसाब से भी देखा जाए तो हिंद महासागर के तमाम जो देश हैं, छोटे देश, कोलंबो और श्रीलंका बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बड़ा देश है, लेकिन और छोटे देश हैं जिनके साथ मिलकर काम किया जा सकता है और इस बे ऑफ बंगाल क्षेत्र को और समृद्ध किया जा सकता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी पहल है मुझे लगता है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में और साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ जोड़ने के लिए इस नीति को हम कह सकते हैं कि विदेश नीति के मामले में भी ये एक बड़ा गेम चेंजर है, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया के देश हिंद महासागर के साथ जुड़ेंगे और आगे पश्चिमी एशिया के लिए भारत एक पुल का काम करेगा।
जी, आपने व्यापक जो आर्थिक लाभ हैं इसे तो काफी विस्तार में बताया, लेकिन अगर हम फोकस करें सिर्फ शिपिंग मार्गों के संदर्भ में, हम जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग है, तो किन किन देशों के साथ व्यापार में इसका सीधा लाभ मिल सकता है, अगर संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बता सकें।
भारत के अगर हम समुद्री व्यापार को देखें तो समुद्री रास्ते से जितना भारी माल जिसका आयात और निर्यात होता है वो समुद्री मार्ग से ही होता है, और भारत का बड़े पैमाने पर जो व्यापार होता है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, हिंद महासागर के तमाम देशों के साथ, पश्चिमी एशिया के देशों के साथ और यूरोप और अमेरिका के साथ भी, ये सारा व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। अगर भारत के पोर्ट्स, अभी के जो पोर्ट्स हैं, हमारे पास एक दर्जन ऐसे पोर्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खड़े उतरते हैं, 8 उसमें से बहुत अच्छी तरह फंक्शन कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, 11 पोर्ट्स ऐसे हैं जिनको हम मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको अगर हम ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि गलथिया बे पे जो ये पोर्ट बनेगा या ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट का जो ये हिस्सा है, इससे भारत का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, हिंद महासागर के साथ, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तमाम देशों के साथ, न्यूजीलैंड के साथ अभी हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, तो उसमें बड़ी मदद मिलेगी, और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ, मिडिल ईस्ट जिसे दुनिया के तमाम देश कहते हैं, उनके साथ व्यापार के लिए हमारे पास पश्चिमी क्षेत्र में ऑलरेडी अच्छे पोर्ट्स हैं। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भारत की लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति और भारत की जो महासागर नीति है उसका फोकस दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के देश हैं, जापान, कोरिया, 10 आसियान के देश और हमारे बे ऑफ बंगाल के जो लिटोरल स्टेट्स हैं, साथ ही साथ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके साथ व्यापार में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी मुझे लगता है।
और पहले आपने सामरिक जो इससे लाभ है उसका भी थोड़ा सा उल्लेख किया है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सामरिक स्थिति को बेहतर बनाने में, उसे मजबूत करने में इस परियोजना की कितनी भूमिका हो सकती है?
देखिए, 2012 में जब चीन ने बेल्ट और रोड परियोजना को लॉन्च किया, तब से उनका फोकस रहा है दुनिया के और इस खास तौर पे इस क्षेत्र के, हिंद प्रशांत क्षेत्र के तमाम देशों के पोर्ट्स के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना। जैसे म्यांमार में क्याकफू पोर्ट को चीन ने डेवलप किया और अपने यूनान प्रोविंस से वो रेलवे लाइन उन्होंने बिछाई है जिससे म्यांमार के पोर्ट से वो ट्रांसशिपमेंट करते हैं। ऐसे ही बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने इस तरह के एग्रीमेंट किए हैं और अपने व्यापार में विस्तार किया है। सो चीन की आर्थिक विस्तार की जो नीतियां हैं और सामरिक तौर पर उनकी जो विस्तारवादी नीति है दोनों ही क्षेत्रों में, तो सामरिक और आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में ये जो नए पोर्ट्स को उन्होंने ड्यूअल यूज पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है वो भारत के लिए एक चिंता का कारण था पिछले बहुत वर्षों में। और इससे निपटने के लिए ही मुझे लगता है जो पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है उनको ड्यूअल यूज फैसिलिटी के लिए लाया जा रहा है, इसमें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट या भारत के पूर्वी क्षेत्र में विजिनजाम पोर्ट है, इन तमाम पोर्ट्स को डेवलप करने के पीछे मंशा कहीं ना कहीं ये भी है कि सामरिक तौर पे भी भारत तैयार रहे कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति हो या चीन की तमाम जो कोशिशें चल रही कि हिंद महासागर में वो अपनी पैठ बना सके उसको रोकने के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि इस तरह के पोर्ट्स को आर्थिक तौर पे सामरिक तौर पे विकसित किया जाए और भारत अपनी सुरक्षा की जो और सामरिक हित जो है उनको संवर्धित कर सके।
जी, और ऐसी परियोजनाएं जब भी शुरू होती हैं तो पर्यावरण से जुड़ी हुई चिंताएं भी यहां वहां उभरने लगती हैं, तो पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन ये हर परियोजना के मूल में होता है, तो उसके लिए यहां पर किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं?
आज से दो दशक तीन दशक पहले हमने देखा था कि जब भी विकास के और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आते थे तो उनमें कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और पर्यावरण से जुड़े हुए या शेड्यूल ट्राइब्स और ट्राइबल एरियाज से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता था। ये बहुत हर्ष का विषय है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 और ICRZ 2019 दोनों के जो कंसर्न्स हैं दोनों से जुड़े हुए, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो या ट्राइबल कम्युनिटीज के जो हितों की बात हो, उन सभी को ध्यान में रखा गया है। 40 से ज्यादा इसमें कंप्लायंसेस को फॉलो करने की बात हो चुकी है और तमाम जो एक्सपर्ट ग्रुप्स बने हैं भारत के तमाम जो बड़े संस्थान हैं उनके सहयोग से इन सभी कंप्लायंसेस को ध्यान में रखा गया और इस प्रोजेक्ट में उनको नजर में रख करके ही इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम जो कंसर्न्स थे, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन को लेकर के हो या वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हो जिसे हम PVATG कहते हैं और जिनका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 338(a)(9) में है, उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो मुझे लगता है कि किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो पर्यावरण हो या बायोडाइवर्सिटी हो या ट्राइबल हितों की बात हो, सभी को ध्यान में रखा गया और इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। एक मुझे बड़ी ही स्मार्ट स्ट्रेटजी लगी ये हमारे नीति निर्धारकों की कि इस प्रोजेक्ट को तीन फेजेस में बांटा गया है। तो पहला फेज 2025 से 2035 तक जो चलेगा, ये सबसे बड़ा है, तीनों में सबसे ज्यादा क्षेत्र इसी में कवर होगा। 166 स्क्वायर किलोमीटर में से मुझे लगता है कि करीब 72 स्क्वायर किलोमीटर का प्रोजेक्ट, तो आधे से ज्यादा इसमें ही कवर हो रहा है। और इन तीन फेजों में बांटने की जो ये बात है उसके पीछे मुझे लगता है एक बड़ा कारण ये है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे, जनता पर उसका कैसा असर पड़ता है, ट्राइबल कम्युनिटीज पर कैसा असर पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी में हमें कुछ जोड़ घटाव करने की जरूरत है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे कोर्स करेक्शन भी किया जा सकता है। तो ये तीन फेजेज में बांटने की जो स्ट्रेटेजी है मुझे लगता है ये बहुत ही सोची समझी है और ये जो जमीनी हकीकत है उसको ध्यान में रखते हुए योजनाओं में और जो मास्टर प्लान है उसमें भी परिवर्तन करने की गुंजाइश देती है। तो इस लिहाज से भी ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि काफी अच्छा है और उसके दूरगामी परिणाम होंगे।
जी, तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, आज हमने ग्रेट निकोबार परियोजना के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि इससे आपको इस महत्वपूर्ण पहल के आर्थिक और सामरिक महत्व को बेहतर तरीके से समझने में सहायता मिलेगी। राहुल जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में